પ્રિયતમ વા સાગર કો બુલાતે પુરુષો વિક્રેતા બુલાતે હૈ સિદ્ધ હોતા હૈ જરૂર પ્રિયતમાઓ કા કોઈ પ્રિયતમ હૈ તો સબ એક કુલ બુલાતે હૈ યે પરમ પિતા પરમાત્મા આઓ હમ આપકો બહુત યાદ કરતે હૈ યાદગાર તો બહુતો ભી બનાતી અબ વો સબ હૈ મનુષ્યો કી યાદગાર જિનકો યાદ કરતે એસે ભી બહુત હૈ જો લક્ષ્મી નારાયણ રામ સીતા આદિ દેવતાઓ કો યાદ કરતે ક્યોંકિ મનુષ્ય સે દેવતા ઊંચે તબ તો મનુષ્ય દેવતાઓ કી પૂજા કરતે હૈ નંબર વાર ઊંચ ઓર નીચ તો હોતે હૈ સબ જાનતે હૈ કે ઊંચે સે ઊંચા ભગવાન કો કહા જાતા હૈ કહે હૈ બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર કહે હૈ બ્રહ્મા ઓર જગદંબા તો મુખ્ય વો હૈ ये तो सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंचे बाबा द्वारा हमको ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है देने वाला मीडिया कौन लू द्वारा बाबा परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं ऊंची से ऊंचा गुरु जानती नहीं तो जो उनके आदमी होते हैं उनको तो सब जानते हैं जब बाप आवे तब ही आकर के अपना परिचय दे उसका परिचय और कोई नहीं देता तो जानेंगे भी कैसे और आकर के ही परिचय देते बाप खुद आकर अपना परिचय दे बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों की सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता बच्चों की सिवाय ऐसे सन्मुख को बैठने वाले बच्चे जो बाप के लिए प्रियतम है जिनसे ज्यादा प्रिय और कोई वो नहीं सकता उनसे बच्चे प्रियतम है जो ऑलराउंड पाठधारी हैं जो सन्मुख पाठ बजाते हैं बाप को सन्मुख मिलते हैं वो बच्चे प्रिय बहुत आए हैं कहते हैं महात्मा जी से हम मिले अब यहाँ तो वो बात ही नहीं क्या बात कि यहाँ कोई महात्मा हो साधु सन्यासी जिससे आकर के मिले क्योंकि यहाँ तो बाप और बच्चों का तल्लुक है बाकी कोई का कुछ काम है कोई और काम है बाप बच्चे के अलावा कोई दूसरा संबंध है दूसरी बात है तो और बात باپ تو مجھے بھی بچوں کے آگے ہی چلاتا ہے. جو بچے نہیں بنتے ہیں ان کے آگے باپ کی بولی نہیں چلتی. اور دسویں میں بھی تم سدھ کر کے بتلا سکتے ہو کہ سب کا سمبندھ ایک باپ کے ساتھ ہے. اور پریکٹیکل میں سب کو باپ ملا ہے. باپ کیسے یہاں کو سنایا برہما دوارا کہ پریکٹیکل میں باپ ملا. پریکٹیکل اسے کہا جاتا ہے جو کاری کر کے دکھائے. باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آدھی میں باپ کا کام ہوتا ہے بیجا روپن, بچے کو پیدا کرنا. اور اس کا کام ہوتا ہے ورثہ دینا. بے حد کا باپ ہو پریکٹیکل میں کچھ نوکاری کر کے جاتے ہیں. یہ نہیں کیے کہ آدھی میں برہما میں بیجا روپن کر دیا, جان کا بیج بو دیا اور بعد میں بچے اپنے آپ سڑک کی بادشاہی کا ورثہ لیتے رہیں گے. نہیں, ورثہ بھی آ سکتی پریکٹیکل میں دے کر. ایسے نہیں کہ میرا کاری باپ ہے تو میرا کاری جان کا ورثہ دے کر کے چلا جائے گا. کسی طریقے بتلاتے ہو کہ سب کا وہ فادر ہے. سب کا من گاڈ فادر ہے تو فادر سب کو ملنا چاہیے. فادر صرف کہے اور کبھی ملے ہی نہیں, وہ فادر کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی جو بھی آتمائیں ہیں سب سے آ کر کے ملتے ہیں. کیوں بولا ضرور 500 کروڑ امنگ سے آج میں اس گاڈ فادر کو مانتی ناسک سے ناسک بھی کیوں ہو. انت سمے میں جب قیامت کا لاکھ پور ہوگا تو جو ناسک سے ناسک آتما ہوگی وہ بھی کہے گی وہ گاڈ فادر ہے. فادر کو پہچانے گی وہ مانے گی. سب سے ملتے ہیں تو ملنے کے لیے تیاری ہے. کوئی سے کلوز کانٹیکٹ میں ملتے ہیں اور کوئی سے سامان روپ سے ملتے ہیں. ٹرانزسٹر سے کان میں آواز سن کر کے ہی ملیں گے. کوئی اخبار میں فوٹو دیکھ کر کے ہی ملیں گے. کوئی ٹی وی سے ہی ساکشاتکار کریں گے. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ نام روپ سے لے رہا ہے. جب 500 کروڑ سے ملتے ہیں تو وہ لوگ کون سے کہتے ہیں کہ وہ نام روپ سے لے رہا ہے؟ جو 9 لاکھ ستاروں کے علاوہ آتمائیں ہیں جو کہ قیامت کے سمے میں چمکنے والے ستارے جان کی روشنی, ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ نام روپ سے نیارا ہے. وہ سنمکھ مل نہیں پاتے اور ملتے بھی ہیں تو پہچان نہیں پاتے, اور پہچانتے بھی ہیں تو پہچان کر کے پھر دوبارہ بھول جاتے, دھوکا دے دیتے. تم تو بتلاتے ہو ان کا نام بھی ہے تو روپ بھی ہے. کون سا روپ ہے؟ نام بھی ہے, روپ بھی ہے اور دیش بھی ہے اور چت بھی ہے. नाम तक होता है। जब काम किया है तो नाम क्या काम किया, जो भी काम किया है वो कल्याणकारी काम किया है। मनुष्य के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि जो भी काम मनुष्य करते हैं वो कल्याणकारी ही करते हैं, लेकिन बाप ने जो भी काम किया है वो सब कल्याणकारी किया है। उसके आधार पर नाम क्या पड़ा, शिव और रूप। रूप भी है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म जो आंखों से भी देखा जा सकता है। आत्मा आंखों से नहीं देखी जाती है, लेकिन आत्मा बुद्धि से पहचानी तो जाती है, पहचान में तो आती है। ये परमात्मा पार्ट है, ये मनुष्य का पार्ट है, तो रूप भी है। कौन सा रूप हुआ है? निराकारी स्टेज वाला रूप, ऐसी निराकारी स्टेज वाला रूप जो धर्म पिताओं की ऐसी निराकारी स्टेज नहीं बनेगी। धर्म पिताओं को भी निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। कैश को, महात्मा बुद्ध को, गुरु नानक को, उनके चेहरे को ध्यान से देखो तो देखने से क्या पता लगता है कि जैसे परम नाम में लटकी हुई आदमी साकार शक्ति पर नहीं है। धर्म पिताएं हैं और धर्मों की धर्म पिताएं, उन बापों का भी बाप, उन धर्म पिताओं को भी जो मान्य है वो किसी के निराकारी स्टेज में होगा। उनके चित्र भी मिलते हैं, बात की यादगार जरूर उसने कोई ऐसा केस चरित्र प्रैक्टिकल में बजाया और उसका देश भी। कौन सा देश है? ऐसे तो शिवलिंग की मूर्तियां सारे विश्व में भी खुदाई, तो पुरानी पुरानी खुदाइयां हुई हैं में, मेसोपोटामिया में, भारत में तो मिलती है। तो उनमें जाति से जाति की तादाद में कौन सी मूर्तियां मिली? शिवलिंग और शंकर की नग्न मूर्तियां मिली। तो जहां जहां मूर्तियां मिली हैं वही उसका देश हुआ क्या? भारत में विशेष मूर्तियां मिली, गांव गांव में, शहर शहर में शिव और शंकर की मंदिरों के रूप में पूजा होती है, स्थापना होती है, उनको बुलाते भी। ये पतित पावन आओ, तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आती है। आत्माएं किसी भी आती है, पार्ट बजाने के लिए आती है, ऊंची स्टेज से आती है और नीची स्टेज में जाती है। तो परमात्मा किस लिए आता है? परमात्मा आता तो ऊंचे से नीचे की ओर है, बुलाते भी है इस धरती पर आ जा रहे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंची स्टेज को छोड़ दे और नीची स्टेज में मेरे समान मेरे बराबरी में आ जाते। तो आ तो जाता है, लेकिन उसकी स्टेज नीति नहीं होती क्योंकि उसको नाम रूप का संग का रंग नहीं लग सकता। और सब मनुष्य मात्र को संग का रंग लगे, राम हो, कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सात संग के रंग में आकर के शक्ति पर नीचे उतरते जाते, लेकिन वो सदा से सदैव ऊंची स्टेज वाला है। इसलिए मंदिर भी कहाँ बनते हैं? शिव के मंदिर में लिंग भी ऊंचे ऊंचाई पर रखा जाता है और मंदिर भी ऊंचाई पर बनाया जाता है। मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उनको नंदीगढ़ कहते हैं। गण माने तो समूह होता है, कम से कम दो का तो समूह हो। नंदी माने बैल, तो जब एक बैल है तो नंदी गण क्यों कहा? जरूर दो बैलों की जोड़ी है तो उससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि वो आ नहीं सकते जबकि मंदिर में बैल भी दिखाया? दिखाते भी हैं, बैल की वृत्ति में शिव परमात्मा को भी दिखाते हैं। बरोबर वो वृत्ति के बीच में रहे, भगवान को भी आना होगा तो जरूर वृत्ति के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शन में तुम भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राम और कृष्ण दोनों ही आत्माएं अपने लास्ट जन्म में जो पार्ट बजाती हैं उनका प्रतीक है नंदीगण। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, बाप कहने वाला कौन है? आत्मा है ना, तो आत्माओं का बाप आत्माओं को ही समझाएगा ना, कि दे अभिमानियों को समझाएगा। गणपति के बच्चे में भी जाकर के समझा सकता हूँ, अभिमानियों नहीं प्रवेश करता हूँ, मैं प्रवेश करता हूँ। जो रूहानी स्टेज वाले बच्चे हैं उनमें प्रवेश करके मैं सर्विस भी करता हूँ, तो उनके भी जरूर प्रकृति में ही आएंगे। उन्होंने फिर बैल दिखाया है, ये अंतर क्या अंधश्रद्धा के आधार पर जानवर क्यों दिखाई दिया? तो जानवरों में प्रवेश करते हैं क्या? जानवर था तो उसका मतलब है कि कच्चा अवतार, मत्स्य अवतार, सूकर अवतार, ये सच्ची बात है। तो कहते हैं गॉड फादर माने जानवरों का फादर, परंतु फादर का नाम क्या है वो तो कोई बतलाए नहीं। लोग तो सागर तो होता तो नाम तुरंत सुनाएंगे, शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। सुनिए, शिव बाबा के नाम ढेर क्यों रखे हुए? ढेर काम किए हैं तो ढेर नाम रखे हुए। वास्तव में नाम तो एक होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो भी काम किए हैं उन कामों का रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी ऐसा परमात्मा का कार्य नहीं है चाहे किसी भी कर्मेंद्रिय से किया हुआ हो जिससे कल्याण की पैदाइश न हो। किसी हालत में कभी अकल्याण हो नहीं सकता, तो ढेर नाम रखती है। होना वास्तव में एक नाम चाहिए, कौन सा? शिव बाबा। ये सब बाप ही रोशनी देते हैं। कौन सी रोशनी? कि बाप के ये इतने नाम ढेर के ढेर क्यों रख दिए हैं? मनुष्य के समय तुच्छ बुद्धि बन गए, को नहीं समझते, वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये उनका भक्ति मार्ग है। अलग मन बिंदु बिंदु करते रहेंगे, बिंदु माने नुक्ता। उर्दू में पहला अक्षर होता है अलग और दूसरा अक्षर होता है बे। मुख्य पहले कौन हुआ? अलग। बिंदु तो 10-20 लगा दो और कोई अंक मत रखो तो कोई वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से सिर्फ बिंदु कह देने से काम नहीं चलेगा, वो बिंदु भी इस शक्ति पर आकर के प्रैक्टिकल में कुछ करके जाता है। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाता है। ऐसे तो सारे दुनिया में जितने भी महात्मा हुए जितने भी महान पुरुष हुए सब ज्ञान सुना करके गए। फिर क्या दुनिया ऊंची उठ गई, स्वर्ग बन गई? तो अलग को नहीं समझते। अलग मानो बिंदु जिस अंक में पहले प्रवेश करता है, पहला अक्षर। वेद शास्त्र पढ़ना ये है भक्ति का। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति भी मनुष्य मनुष्य ही करते हैं, मनुष्य ही भक्ति ठहरे। उनको भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं बस भगवान मिल गए, इतने मुक्ति को पा लिए। समझते कि नहीं, बात की शूटिंग होती है कि नहीं? ऐसे जो ध्यान दीदार में जाने लगा उसके लिए क्या समझते हैं? ये तो बहुत भगवान के पास पहुंचा हुआ है, बस किसी को भगवान मिला है। और बाकी को जिनको साक्षात्कार नहीं होता उनको भगवान, उनको भगवान नहीं मिला। बाप कहते हैं ये ध्यान दीदार आदि ये सब भक्ति मार्ग है, टाइम वेस्ट करने का तरीका। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जीवन मुक्ति किस बात से होती है? ज्ञान से होती है या साक्षात्कार से होती है? ज्ञान दीदार से होती है। वो समझते हमने मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलता है तो मुक्ति ही देता है, क्योंकि वो है ही स्वरूप मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन करता तो करता तो करता, बात तो नहीं करता, दो कणे के बदले में हल दे देते हैं, सारे स्वर की बात सही दे देते। पापा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने का, इस कारण इस कार्य में लगा दो तुमको रिटर्न भविष्य में मिल जाएगा। साहूकार कुछ बात को पा नहीं सकेंगे, वो बलिहार जा नहीं सकते। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। रास्ता चलते चलते भी किसी का कल्याण कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठ करके ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान है बिल्कुल ही सही। तो परम पिता परमात्मा का कब नाम तुमने सुना है? कोई ऐसा होगा जिसने परमात्मा का हम भगवान का पार फादर का नाम नहीं सुना हो? वो कहेगा क्या है? हाँ सुना क्यों नहीं? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। भगवान का नाम सुना है? सुनेंगे हाँ सुना है। क्या है? परमात्मा कहने से वो सबका पाप हो जाए। निधि आत्मा है वो सबका पाप है। आत्मा से दीदी पुष्प की बतंगू दीदी तो उनका भी पाप है। तो सबका बाप है, सबका बाप हो जाने का मतलब क्या हुआ? बिच्छू नरम चीज देखेगा तो डंक मारेगा, परमात्मा भी इस दृष्टि पर आता है तो पहले किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? किस रूप से प्रत्यक्ष होता है? माँ के रूप से प्रत्यक्ष होता है। तो नरम दिल वाले के रूप से प्रत्यक्ष होता है या कठोर दिल वाले के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? भगवान दुखी हुआ, तुम भी चलते चलो, अगर कोई जवाब नहीं देता है तो भी चलते चलो, सिर्फ ये धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सचिव में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, बात उनको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है, बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात। ये तो त्रेता जन्म भी सबको भक्तों को साक्षात्कार होते रहे, कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे साक्षात्कार होता है, यदि है मार्गदर्शन बताने के लिए बाबा कहते तो मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पढ़ पाएंगे। इकट्ठे रह करके पद पाना ये है भारी मंदिर, क्या कहा, यानी ऊंचा पद पाने वाले कौन होंगे? साधु संन्यासी, अकेले रहने वाले दूरवाद घुसवाद नहीं होंगे, कौन होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारे विचारे क्या करें, तुम्हारियाँ क्या करें, शादियां करें बैठ करके है। इकट्ठे रहकर पद पाना ये है बड़ी भारी मंदिर, और संग तोड़ एक संग तोड़ना इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़ करके चले जाते, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर के राजी करेंगे। अब पुरानी दुनिया का बिना समय है, ये बुद्धि में रख करके पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कब होगा? पहला ज्ञान मिलता तब है, ज्ञान मिलता ही तब है जब दुनिया से वैराग होता है, बिना वैराग के पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, ये बुद्धि में रखना। 8 घंटा ऐसी आज की सर्विस में रहूं, कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी सब तरफ से बुद्धि हटाए कृष्ण को ही याद करते हुए, अगर कृष्ण को ही जाना चाहते हैं तो एक कृष्ण को ही याद करना पड़े, तब तो अंतमति सुगति होगी। एक कृष्ण को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि हम वैकुंठ धाम जा रहे हैं तो कब जा सकेंगे, जो सारे जीवन में जो वाइब्रेशन चलेंगे, जैसी बुद्धि बनेगी वैसी बुद्धि मति अंत में बनेगी और अंत मते सुगति हो जाएगी। कोई राम का भक्त है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो, तो भी जब निरंतर याद करेंगे तब अंतमति सुगति हो जाएगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंतकाल जो स्थित मिले, अगर कोई सन्यासी गुरु है तो उनको भी याद करना पड़े तो अंतमते सुगति होगी। तो पहले पूछो तुम कहाँ जाना चाहते हो, वापस तो जाना है परंतु कहाँ जा देंगे, क्योंकि भक्ति से इतनी ताकत नहीं होती। क्यों? इतनी ताकत क्यों नहीं मिलती, इतनी ताकत, इतनी ज्ञान की मिलती है, क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेक से आती है। भक्ति रावण से आती है, अनेक सिर वाले से, अनेक सरमाना अनेक मत देने वाले जो संगठित रूप होकर के काम करते वो हुए रावण। भक्ति अनेकों से आती है, रावण से आती है और ज्ञान एक से आता है। एक स्त्री विचारणी होती है, एक स्त्री अभिविचारणी होती है, कटी होती है, साध्वी होती है। ज्यादा शक्ति कितनी होती है? सचित्व में ज्यादा ताकत होती है। तो एक से बुद्धि लगाओ। शक्तिवान तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पार पूछा हुआ है इस बात का। सर्वशक्ति बात कर, ऊंची से ऊंची बात है उनको याद करो तो उनके देश में चले जाओ। उनको याद करो, ऊंची से ऊंची बात है तो उनको याद करो, उनके देश में चले जाएंगे। इसके तन में बैठ करके ये बात बोला, ब्रह्मा के तन में बैठ करके शिव बाबा ने ये बात बोला। यहाँ उनके शब्द क्यों लगाया? दो बात नहीं, जब ब्रह्मा की बाजू में ही बैठा हुआ है तो उनके उनके क्यों कर रहा है?
भविष्य
की बात साबित होता है कि भविष्य में वो परमात्मा पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। उनको याद करो जो ऊंची से ऊंचा पाठ भारी है, ऊंची से ऊंचे पाठ बजाने वाला है। उनके देश में चले जाएंगे, सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते। तो आते ही द्वापर में देवताएं कब होते हैं? देवताएं होते ही है सत्युग आदि मंत्र देते हैं, लेकिन ये सब बातें बात ही समझा। उनके मंत्र देने से कोई फायदा नहीं। जिसका शास्त्र है गीता, वो बातें बात ही समझाते हैं। जिसमें भगवान भी कहते हैं कि मन मना भव, मनुष्य नहीं कह सकता ये बात क्या कि मन मेरे में लगा दो। क्योंकि जैसे में मन लगाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। जिसने कहा मन मेरे में लगा दो, तो वो कैसा होना चाहिए जो हमारी गति सदगति हो जाए? जरूर निराकारी, निर्विकारी, निसंकल्प स्टेज वाला होना चाहिए। अगर हम ऐसे में अपने मन को तिरोहित कर देंगे, समाय देंगे, तो हम भी कैसे बन जाएंगे? निसंकल्प स्टेज वाले बने कंप्लीट आते। तो भगवान ही ये बात कहते हैं मन मना भव, मेरे में अपने संकल्पों को समा दो। मन मना भव तीन अक्षर है, मत मना भव मन मेरे मन में भव समा जाए, मेरे मन में समा जाए। मन जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, इन संकल्प मात्र भी विरोधावासना हो, वाचा से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत दूर की बात और बहुत बड़ी बात हो गई। और कोई भी शास्त्र में ये बात नहीं क्या? मन मना भाव का डायरेक्ट ये सिर्फ गीता शास्त्र ही ऐसा है और गीता का ही है भगवान के रूप। भगवान स्वयं आकर कहते हैं मुझे याद करो, आकर कहते हैं, ऐसे नहीं आए और चले जाए फिर कहते हैं मुझे याद करो। और शक्ति का चक्र भी समझा, उनसे तुम चक्रवर्ती राजा बने। ये नारिश बाप ही समझाते हैं, दूसरों पर तुम समझा सकते हो, इनकी से ऊंचा है निराकार भगवान। ऐसा कौन सा चित्र है जिसमें भगवान का चित्र दिया हुआ हो? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र है? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र है जिसलिए हम कहें कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है निराकार है, ऊपर गोला रखा हुआ है, वो है निराकार। हाँ, जब हम बात यहाँ बताई कि चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, तो जो ऊपर गोल बिंदु रखा हुआ है वो कोई चित्र थोड़ा ही है, उसको चित्र कहेंगे? उसका चित्र खींचा जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है? नहीं, चित्र किसे कहते हैं जिसका कोई चरित्र भी हो? तो चरित्र अच्छा होगा या बुरा होगा वो कब होगा? जबकि शरीर धारण करे। तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन से चित्र की तरफ इशारा करना पड़े? जरूर कोई निराकारी स्टेज वाला एक चित्र है, ऐसी निराकारी स्टेज ब्रह्मा की नहीं बनी किसी चित्र में, किसी फोटो में। जैसे क्राइस्ट को दिखाते हैं निराकारी स्टेज वाला, गुरु नानक को निराकारी स्टेज वाला दिखाते हैं, ऐसे ब्रह्मा का कोई चित्र नहीं है जिसमें निराकारी स्टेज दिखाई गई है। इसे क्या साबित हुआ? इसे साबित हुआ कि ब्रह्मा जब तक जीवित रहा तब तक मृत्यु लोक में रहा, निराकारी स्टेज वाला नहीं बना। और निराकारी स्टेज वाला नहीं बना इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के चित्र समझे नहीं जाते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पूजा कब होती है? पूजा का आधार क्या होता है? पूजा का आधार होता है प्योरिटी, कंप्लीट प्योरिटी होगी तो पूजा होगी। प्योरिटी नहीं है, तीन मूर्तियों में एक सिर्फ ब्रह्मा की मूर्ति ऐसी है जिसकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है, दाढ़ी मूछ माना विकारी मनुष्य। और विष्णु और शंकर को दाढ़ी मूछ भी दिखाते हैं, विष्णु को नहीं दिखाते हैं, विष्णु को तो कंप्लीट दिखाते हैं निर्विकारी, और शंकर को दोनों रूपों में दिखाए। कौन कौन से दो रूप? दाढ़ी मूछ वाला भी रूप दिखाते हैं और निर्विकारी क्लीन शेप वाला भी चित्र दिखाते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि वही वह स्वरूप है जिसको श्याम सुंदर कहा जाता है? ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर पार्ट बजाने वाला, ऐसा भयंकर और ऐसा प्यारा पार्ट बजाने वाला और कोई धर्म में नहीं होता, ऐसे बुद्धि में बोला है, बताया। वो ऊंचे से ऊंचा निराकार भगवान है, वो भी ऊंचे से ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं, मूल वतन में। मूल वतन में क्या होता है? मूल वतन में तो मूल रूप ही होगा, सूक्ष्म रूप तो बाद में तैयार होता है, स्थूल रूप बाद में तैयार होता है। मूल रूप कौन सा है? मूल माना कारण रूप, बिंदु आत्म निसंतम की स्टेज। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहती, उनमें शक्ति का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भवका है, तो जास्ती वैभव, सबसे लंबा चौड़ा मंदिर किसका दिखाते हैं? लक्ष्मी नारायण का। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना भवका नहीं है। क्यों है? इतना माना कितना? जितना लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भव्यता दिखाते हैं, बिरला मंदिर बने हुए हैं, जेके मंदिर बने हुए हैं, उनमें इतना भव्यता दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। और जगदम्बा का मंदिर छोटा सा बनाते हैं, मूर्ति भी छोटी सी रखते हैं, तो जगत पिता जगदम्बा के मंदिर इतने छोटे क्यों बनते हैं? मूर्तियाँ छोटी क्यों बनती है? अपूर्ण रूप है, संगम योग का आपको साथ ही रूप है, और जब वो संपन्न बन जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहीं जाते जगदम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का मंदिर देखो, जगत पिता जगदम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क लगे। लक्ष्मी का भव्य मंदिर बना रही है तो अंतर हुआ ना, क्या अंतर हुआ? जगदम्बा हुई संग बिंदु की और लक्ष्मी हुई सत्यु की। वो संपन्न रूप है और वो अपूर्ण रूप है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो ये भी इतने साधारण हैं, तो इनके मंदिर भी अति साधारण बनाए हुए। लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्षता हो जाएगी, नारायण के रूप में प्रत्यक्षता हो जाएगी संसार में, तो साधारण हुए या असाधारण हुए? साधारण। और जब तक उस रूप है साधना गाए जाते हैं तो चित्र भी साधारण बनाए हुए। जगदम्बा को कहां काला भी बनाते हैं, महाकाली का रूप भी दिखाते हैं। तो तुम जानते हो संगम पर हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर लक्ष्मी भविष्य में कितनी शोभनी को होती है। शोभनी तो रूप तो भविष्य का होगा क्योंकि वो आदि का, और कलयुग अंत की शूटिंग का रूप कैसा होगा? महाकाली का रूप, भयंकरी का रूप। महाकाली के साथ कौन होगी? जरूर महाकाली होगी। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो ज्ञान से ही होती है, गाय की स्थापना ज्ञान से, गति सदगति की स्थापना, सदगति वाली दुनिया की स्थापना। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात नहीं है कि गौ के मुख से अमृत निकला। गौ का मुख क्यों दिखाया हुआ? मछली मार्ग में गंगोत्री पर जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ करके, फिर वहां गौमुख से गंगा क्यों दिखाई गई? क्या झूठी बात है? झूठी बात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने समझ लिया कोई स्थूल गौ होगी। ये स्थूल गौ की बात नहीं है, भारत में कन्याएं माताएं ही गौ की मुआफिक मानी जाती है। क्योंकि भारत की कन्याओं को माताओं को जिस फूटे से बांधा जाता है बस सारा जीवन उसी फूटे से बंधी रहती है, इसलिए गौ के समान उनका स्वभाव संस्कार दिखाया है। तो ऐसी गौ के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। बैल का मुख, गुरु के मंदिर में तो बैल मुख दिखाया है, गौमुख क्यों दिखा दिए? साबित हुआ कि जरूर जो संपन्न रूप होता है ज्ञान का, वो संपन्न स्टेट गौमुख की है। बैल का मुख वो उतना गायन पूजन योग्य नहीं है, और गौ का मुख गायन पूजन योग्य है। कृष्ण को भी संगम पर बाला वर्षा देते, ऐसे नहीं उसने सतीगुण वर्षा पाया। कौन सा वर्षा? वर्षा किसे कहा जाता है? स्वर्ग की बात चाहिए तो स्वर्ग की बात चाहिए किसी ने क्या संगम पर पाई? तो सभी छोड़ गए, किसी ने आई में सभी छोड़ दिया उससे पहले क्या स्वर्ग का वर्षा पा लिया? नहीं तो फिर कैसे कहें? हाँ, वही आत्मा जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके संगम रूप पर ही स्वर्ग की बात चाहिए का वर्षा उस संग के द्वारा महसूस करती है, अनुभव करती है। संगम होने के कारण उन्होंने सिर के बदले श्रीकृष्ण का नाम लिख दिया। अब तुम जानते हो जगदम्बा ही दक्षिण बन गई। जगदम्बा और लक्ष्मी ये दो आत्माएं हुई या एक आत्मा हुई? जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है इसका क्या मतलब हुआ? उतार करके जगदम्बा लक्ष्मी बनेगी सचू में पैदाइश कितनी होगी? जगदम्बा लक्ष्मी बनेगी तो उस लक्ष्मी से कितनी पैदाइश होगी? मुरली में तो बोला है राधा भी निकली तो सीता भी निकली, दोनों की प्रतिष्ठा संगम में ऊपर होती है। तो क्या राधा और सीता दोनों ही जगदम्बा के पास हुए? जगत कम्बा माना सारे जगत की अम्बा, और लक्ष्मी सिर्फ अपने बच्चे की माँ होगी सती हुई, सारे जगत की माँ नहीं होगी। लक्ष्मी का कनेक्शन 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट से नहीं है, उसका कनेक्शन सिर्फ देवताओं से, यानी ब्रह्मा को विष्णु बनता है जैसे, तो ब्रह्मा का टोला, ब्रह्मा का स्वरूप और जगदम्बा का स्वरूप, इसमें अंतर क्यों दिखाया? क्योंकि ब्रह्मा का पार्थ जिसके द्वारा बजाया गया वो कृष्ण की सोल, वास्तव में जगदम्बा का पार्थ है कृष्ण की सोल ब्रह्मा का, लेकिन वो उसका अपना शरीर नहीं होता जब वो पार्ट बजाता है जगदम्बा के, अपना शरीर तो पुरुष चोले का था, इसलिए उसकी पूजा जगदम्बा के रूप में नहीं होती। हाँ, वो जिस चोले में फिर प्रवेश करता है स्त्री चोले कौन ब्रह्मा, तो उसकी जगदम्बा के रूप में पूजा पूजा होती है। तो ब्रह्मा को क्या बनता है? विष्णु, माना ब्रह्मा की ही सोल फिर विष्णु का रूप धारण करती है, और विष्णु में कोई एक आत्मा तो है, विष्णु में कितनी भुजाएं दिखाई जाती है? चार भुजाएं, तो चार भुजाओं का मतलब क्या हुआ? चार सहयोगी आत्मा, तो उन भुजाओं से मतलब है क्या? तो जगदम्बा लक्ष्मी तो बनती है, लेकिन लक्ष्मी के भी दो भुजाएं हैं, चार भुजाएं की माँ लक्ष्मी कही जाती है, लेफ्ट हैंड भी है तो राइट हैंड भी है, एक कलश को धारण करता है और एक कलश को कलश के अमृत को बांटता है। तो जिसने कलश के वजन को धारण किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, या जिसने बांटा वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ? बांटा वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, बांटने वाला तो प्राप्ति कर जाएगा, और जिसने धारण किया है और बांटा नहीं है वजन उठाया, जब जिसकी प्राप्ति होती है उसकी दुनिया गुण गाती है। मकान है, मकान की एक ईंट नीचे लगी हुई है और वो ईंट ऊपर भी लगी हुई है, दुनिया किसको देखती है और मानती है और समझती है? ऊपर वाले को देखती है, मानती है, समझती है, और जो फाउंडेशन में उसको परमपिता परमात्मा देखते, परमपिता परमात्मा ने लक्ष्मी की ज्यादा महिमा की है या जगदम्बा की ज्यादा महिमा की? जगदम्बा की ज्यादा महिमा की। भले जगदम्बा का रूप सत्यु की लक्ष्मी जैसा नहीं होगा क्यों, लेकिन फिर भी लक्ष्मी छोटी हो जाती है और महालक्ष्मी बड़ी हो जाती है। नाम मान लगा क्यों है? महा माना बड़ी, क्यों महालक्ष्मी लगना पड़ा? क्योंकि उस लक्ष्मी को भी जन्म देने वाली जन्मदात्री कौन हुई? जगदम्बा हुई। क्योंकि जगत पिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है और जगदम्बा से सरस्वती की लक्ष्मी को वर्षा मिलता है, तो सती की लक्ष्मी जिससे वर्षा लेती है वो उसकी भी अम्मा हो गई। बिना अम्मा के वर्षा मिलेगा क्या? तो वो हो गई महालक्ष्मी। दोनों का स्वभाव संस्कार मिलना मानस महालक्ष्मी। इसलिए घड़ी में भी दो सुइयां हैं, एक सुई बहुत चक्कर काटती है, दो सुइयों में से एक सुई ज्यादा चक्कर काटती है तीव्र गति से और एक सुई धीरे धीरे चलती है, उसकी चाल धीमी होती है। लेकिन दोनों सुइयां जब मिलती है, छोटी सुई के ऊपर जब बड़ी सुई आती है तब घंटे बजते हैं। संसार में भी ज्ञान के घंटे बजेंगे, ज्ञान घंटे बजेंगे, ज्ञान के बम फूटेंगे जब दोनों सुइयां मिलकर एक हो जाती है। अभी लक्ष्मी ही चौरासी जन्म ले जगदम्बा बनती है। ये है ब्रह्मा का कुल, तो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल फिर चौरासी जन्म लेते हैं तो अंत में आकर शुद्ध कुल बनते हैं। अच्छी बातें हैं धारण करने की, धारणा नहीं होती है तो कहेंगे दल है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आपसे ही काम चला सकते हैं। गॉडफादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो, ऐसे बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं, आप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज टर्न एडिड होते हैं तो सब बच्चे, परंतु जिन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कौन गिराता है? नहीं गिराते, उनके पाप नहीं गिराते हैं। माया कोई चीज होती है क्या? अपने ही पूर्वजन्म की कमजोरी सूटिंग की जगह हमारे सामने आती है, जो माया बन करके हमको बाप से दूर कर देती है। तो पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इतनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा है, बाबा ही है और कोई नहीं हो सकता है। गाते हैं प्रभु अंधों की लाठी, यहाँ हर एक चीज इंडिविजुअल दवाई दी जाती है। कीमत जो मिलती है परमात्मा बाप से डायरेक्ट है, वो सबको अलग अलग कीमत मिलती है, एक जैसी कीमत सबको नहीं मिल सकती। कहते भी हैं ज्ञान ज्ञानहीन को राह दिखाओ प्रभु, ज्ञानहीन को अंधा कहा जाता है। कभी की रात में शिव बाबा आते हैं, कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिविर भी रात्रि कहते हैं। दोनों की रात्रि क्यों कहते हैं? राम का जन्म दोपहर के 12 बजे दिखाया और कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे, और शिव का भी रात्रि के 12 बजे। अब शिव तो है परमात्मा, उनकी कौन सी रात्रि? स्थूल रात्रि की बात है क्या? सतीव त्रेता दिन द्वापर कलयुग रात, किसकी रात और किसका दिन? सतीव त्रेता 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात्रि। हाँ, ब्रह्मा और ब्राह्मण होते हैं तो होते ही, तो कहाँ की बात हुई? जरूर शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा भी होता है तो ब्राह्मण भी होता है। जब ब्रह्मा अज्ञान अंधेरे में है तो ब्राह्मण की भी अंधेरी जाती है। निश्चय निश्चय के चक्र में चलते रहते, ठोकरें खाते रहते। और जब ब्रह्मा उजेले में आता है, संपन्न बनता है, तो ब्राह्मण भी उजेले में सतयुग में आ जाते। जानते हो कलयुग का अंत और सत्युग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। असली घोर अंधकार की रात्रि वो हुई कौन सी, जब कलयुग का अंत हो घोर अंधियारी रात और सत्युग की आदि सत्य गुरु की सवेरा हो, तो सवेरा कब से होना शुरू होता है, कलयुग में कब कहेंगे घोर अंधियारी रात्रि, जब परमात्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म की शुरुआत होती, परमात्मा कौन सा युग स्थापन करने के लिए आता है, आता ही है सत्युग स्थापन करने के लिए। तो सत्युग में ही चार अवस्थाएं हैं, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तम, ये चार अवस्थाओं की समाप्ति होना माना घोर अंधकार की रात्रि हो जाती है ब्राह्मण की दुनिया में शुद्धि की जड़ी। 40 वर्षों का जो पहला पीरियड है जिस समय ब्रह्मा की आदि ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है, तो ये 100 साल पूरा होना माना एक आवृत्ति पूरी हो गई है। तो पल के अंत में परमात्मा से रुको आना जरूरी है, और जब परमात्मा शिव कल्प के अंत में सृष्टि पर आते हैं तो जरूर अज्ञान अंधकार की घोर रात्रि होनी चाहिए, और आते किसके लिए है, वैश्यों के लिए नहीं आते, शूद्रों के लिए नहीं आते, आते किसके लिए है, देवताओं के लिए, देवात्माओं के लिए, देवात्मा गुण बनते हैं जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्रह्मा की रात्रि सो ब्राह्मणों की रात्रि, यानी ब्रह्मा आदि ब्रह्मा जब 100 साल पूरे होते हैं तो उसका मृत्युलोक समाप्त हो, और मृत्युलोक समाप्त होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा, जरूर अमरलोक शुरू, यानी अमरनाथ के बच्चे भी कैसी स्टेज में स्थिर हो जाने चाहिए, अमर भव का वरदान वाली स्टेज में स्थिर हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय, निश्चय है जब तो भगवान बाप के बच्चे जिंदा है जन्म हुआ, और अनिश्चय पैदा हुआ जैसे मर गए, तो जन्म मृत्यु का चक्र जब तक चलता है तब तक अमर नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों को अमर भव का वरदान मिलता है तो ये अपना अपना टाइम अलग अलग लिखा हुआ है, हरा आदि ब्रह्मा का टाइम कौन सा हुआ था, जब से उसको अमर भव का सदा का वरदान मिल जाता है कौन सा टाइम हुआ, उसी ने बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, घोषणा कब कराई गई संख्यासठ में, तो 66 में जो घोषणा कराई गई थी उसमें 10 वर्ष और ऐड कर दिए, 76 में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप का भान हो जाना चाहिए। तो रात्रि कौन सी हुई, 76, जबकि परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है, लेकिन किसके द्वारा शुरुआत होती है, स्वदेशियों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा, विदेशी लोग रात्रि के 12 बजे से दिन की शुरुआत मानते हैं, और भारत में भारत की जो तिथि तारीख बदलती है वो कब से बदलती है, सूर्योदय से, जब प्रैक्टिकल में सूर्योदय होता है तब भारत में दिन की तिथि की बदलाश होती है, तो 76 में शिवरात्रि मनाएगी वो कब मनाएगी और किसके द्वारा मनाएगी, विदेशियों के द्वारा पाप प्रत्यक्ष हो सके, यानी ब्राह्मणों की समझ की दुनिया में जो विदेशी धर्मों के बीज रूप आत्माएं हैं वो पाप को प्रत्यक्ष करती है, भारतीय धर्मों की बीज रूप आत्माएं पाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाती। 4 मुख्य धर्म है इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन और सबसे मुख्य देवता धर्म, तो देवता धर्म का जो बीज है उसके द्वारा तो परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता ही है, वो स्वयं भी अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर पाता, इसलिए कहा जाता है भगवान से बड़े भगवान के बच्चे, क्योंकि भगवान के बच्चे भगवान को भी प्रत्यक्ष करते हैं संसार में। तो वो विदेशी धर्मों की जो बीज रूपात्मय है वो पहले पहले बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ब्राह्मण विसंग दुनिया में गलत पहले समझ लिया कि जो बाहर की विदेशी है वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अरे माला के मन की बनने वाली आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष करेंगी, या दुनियावी लोग बाप को प्रत्यक्ष करने की ताकत रखते, तो तुम जानते हो कौन सी रात्रि, तुम जानते हो कलयुग की अंत और सत्य की आदि को रात्रि कहा जाता है। इस समय भक्ति मार्ग के धक्के खा करके रात तंग हो पड़े, या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या कहते हैं हम ही परमात्मा। दो बात, या तो कहते थे अंत ही नहीं उसका पाया जा सकता, हम नहीं जान सकते, या फिर कह रहे थे वो हम, हमारे मुकाबले और कोई परमात्मा परमात्मा। कितना समझाया जा सकता, कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, तो शौक रहेगा तत्व प्रधान को शौक रहेगा या समो प्रधान, तत्व प्रधान आत्मा सर्विस करेगी। तत्व प्रधानता की स्टेज में जब जब पहले पहले शुरुआत में बाप को जो पहचानता है उस समय सात्विक की स्टेज होती है, और फिर बाद में धीरे धीरे संघ के रंग में आने से तामसी स्टेज हो जाती है। तो सात्विक की स्टेज सर्विस बहुत करती है, और तामसी स्टेज सर्विस करे बाबा को भी शौक, परंतु बाबा कहाँ जा रहे, बाबा कहीं जा नहीं सकते, क्यों बाबा तो है ही सत्व प्रधान, सत्व कहा जाता है उसको, सत्य चित आनंद कहा जाता है, तो दौड़ दौड़ के सर्विस नहीं करनी चाहिए। ये ला नहीं है, ला क्या है, नियम क्या है, संसोत्पादन या बाप खुद अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। संसोत्पादन बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, अब बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, जो ढेर के ढेर आ जाएंगे वो बाहर क्यू में बैठ जाएंगे। हो पाया कितने मनुष्य गए, ये तो सबका बात है, वो तो सिर्फ क्रिश्चियंस का ही पोप है, पोप को भी सदगति देने वाला वही परमपिता परमात्मा है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है, वो तो झूठी आशीर्वाद कर दे। ब्रह्मा कुमारियों को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, न समझने के कारण वो समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं, कौन नहीं साधु संत महात्मा जो ब्लेसिंग करते हैं वो क्या समझते हैं कि हमने इनको वरदान दिया, इसलिए हम ब्लिसफुल हुए। वास्तव में ये भी परमात्मा ही ब्लेसिंग करता है, यहाँ तो आते हैं देखा जाता आशीर्वाद लेने का लायक है व नहीं है, ऐसे देखा जाता है, तो सॉल है कैसे पता चलेगा कि आशीर्वाद लेने लायक है या नहीं है, कैसे पता चले, कोई नया आया तो कैसे समझोगे कि आशीर्वाद लेने लायक है या नहीं है, क्या करेंगे वेतन को देखने से पता चल जाएगा ये लेने लायक है या नहीं लेने लायक, ना लायक है या लायक है, एक्ट से मानो यहाँ आए कोई लड़ाई झगड़ा करने लगे तो नालायक उनके बगा दे, कौन सा ज्ञान, ज्ञान अगर उसमें होता तो आता ही गाय सिक्योरिटी, अच्छा आते आते ये देखो कि सिक्योरिटी कितनी है, माउंट आबू में प्योर आएंगे या गु वाले आएंगे, नाम ये माउंट आबू पहाड़ के बदबू का पहाड़ जाके इकट्ठा होगा या पवित्र आत्मा जाके इकट्ठी होंगे, भगवान के पास कौन जाएंगे, जो आप पवित्र आत्मा ही जानेंगे ना, कैसे पहचानेंगे ये लायक है कि ना लायक है, کیوں نہیں آتا؟ باپ کا ہاں باپ کا پریچے دو. اگر باپ کا پریچے بدھی میں بیٹھتا ہے تو لائق ہے, اگر باپ کا پریچے بدھی میں نہیں بیٹھتا تو نہ لائق. تو جاتی ٹائم بیسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, بگایا جانا چاہیے. ایسے مرلی میں کیوں بولا؟ کیونکہ باپ سے ڈائریکٹ 84 جنموں کا ورثہ لینے یوگی ہی نہیں, اس کو تو دوسرے دھرم میں کنورٹ ہی ہونا ہے. اس کی بدھی میں باپ کی ترنت پہچان بیٹھ جائے, سمجھ لو اچھا ورثہ. اگر سمجھانے سے بھی بیٹھ بدھی میں بات بیٹھتی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں تھا, محنت کرنے سے بھی کوئی فائدہ. محنت اگر کر بھی دی, چلو چارا چتر کھینچ کے سمجھائے بھی دیے, تو رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ بعد میں بھاگ جائے. کیونکہ اس کے اندر پور جنموں کے سنسکار باپ کے سنگ کے رنگ کے ہیں ہی نہیں. جو آتما